जही सुमिरति सीधी हो गण नायक करी वर बदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मंदौं गुरु पद पदम परागा मंदौं गुरु पद पदम परागा सुरचि सुबासु सरस अनुरागा। बोले श्री हनुमंत लाल की प्रातः स्मरणीय श्री कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाश मान सूर्य पूज्यपाद कलि पावना कलि अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्णचंद महाराज जी के चरणों को ध्यान करते हुए आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर जी की महान कृपा से साथियों मैं नवीन कुमार मिश्रा राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये रामचरितमानस का प्रथम प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूं। नारद मोह और मुझे आशा है कि आप लोग मेरे इस राठौर कैसेट के माध्यम से निकले हुए इस प्रथम कार्यक्रम को अपने हृदय में जगह देकर मुझे आगे बढ़ने की चेष्टा प्रदान करेंगे। तो साथियों भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है और हमारे भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ जी जिस प्रकार से अपना नाम रखते हैं वैसे ही उनका स्वभाव भी बड़ा भोला है। काय भगवान शंकर सम कल्याणम आकरोति शंकरा, यानी सब कल्याणों को करने वाले कौन हैं? हमारे भगवान शंकर। इनके अंदर आपको कुछ अजीब से गुण मिलेंगे जो कि शायद दूसरे देवताओं में आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नंबर एक गुण तो इनके अंदर यह है कि इनको हर एक इंसान पूज सकता है या इनकी पूजा कर सकता है। शायद ही कोई ऐसा हिंदू परिवार आपको मिलेगा जिस परिवार के अंदर आपको एक छोटे से शंकर जी रखे हुए ना मिले और एक तुलसी का वृक्ष लगा हुआ ना मिले। इसके अलावा एक बात और इनमें है, ये कहलाते हैं आशुतोष प्रभु अवधर दानी। संसार में जब इनका हृदय प्रसन्न होता है तब ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला क्या मांग रहा है, जो भी मांगता है ये उसे दे डालते हैं। एक बार सती जी कहने लगी कि नाथ अरे सारे देवता तो अच्छे अच्छे स्थानों पर रहते हैं, देखिए ना भगवान विष्णु जी को ही देखिए क्षीर सागर में रहते हैं, ब्रह्मा जी को देखिए ब्रह्मलोक में रहते हैं, तो फिर आप यहाँ पहाड़ों की गुफाओं में पड़े पड़े अपना जीवन क्यों बिताते हैं? अरे आप भी कोई बढ़िया सा महल बनवावे, आप भी रहें और हम भी रहें। यह प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, महल एक बनाओ। है प्रार्थना ये नाथ महल एक बनाओ, बनवा के महल नाथ के हमको बिठाओ, हमको बिठाओ। अरे महाराज स्वामी एक सुंदर सा महल बनवाइए, आप भी रहें और हम भी रहें। भगवान शंकर ने कहा सुनो हे सती, कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और होई है सोई जो राम रच राखा। गोस्वामी बाबा दो चौपाइयों को लिखते हैं और दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको मिलेगा। कहा कि देखो जो हमारे तुम्हारे भाग्य में है ना उसे मिटाने वाला कौन है? जब भाग्य में ये महल नहीं है, भाग्य में पहाड़ों की गुफाएं ही है, तो हमें तुम्हें जो है वो महल कहां से मिलेंगे? सती जी कहने लगी, नाथ गोस्वामी बाबा ने भी तो कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। हम अपने कर्म के माध्यम से भाग को पलटने का प्रयास करेंगे। आप महल तो बनवाइए, उसमें रहना प्रारंभ कीजिए, क्यों ना हमारे भाग बदल जाएंगे। भोले मुस्कुराए, कहा ठीक है। भोले ने तुरंत देखो विश्वकर्मा बुलाया, भोले ने तुरंत देखो विश्वकर्मा बुलाया, और बुलवा के विश्वकर्मा महल एक बनाया, महल एक बनाया। भगवान भोलेनाथ विश्वकर्मा जी को बुलवाकर सुंदर एक महल की रचना करवाते हैं। महल जब बन गया तो देखिए, अपने हिंदू समाज के अंदर एक रीत है कि जब कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुलवाकर उस चीज का पूजन करवाया जाता है, या घर में अगर रहना प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले घर का गृह प्रवेश करवाया जाता है। तो सवाल इस बात का है कि भगवान शंकर जी के घर की पूजा करवानी है तो भाई ब्राह्मण भी जरा उच्च कोटि का होना चाहिए ना। उस जमाने में दशकंधर जो है ये याज्ञिक सम्राट समझा जाता था। भगवान भोलेनाथ ने अपने परम शिष्य दशानन को बुलवाया गृह प्रवेश करवाने के लिए। दशानन आता है, विधिवत भगवान शंकर जी का पूजन करवाता है, और जब ब्राह्मण पूजन करवाता है तो उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे भाई दशकंधर जी, आप अपनी दक्षिणा स्वीकार करें, जो भी आप बताएं हम आपको दे दें। रावण बोला, भोले बाबा हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, आपका पूजन हो गया, मैंने अपना कर्तव्य किया, अब जा रहा हूं। कहा, नहीं भाई, जब तक आप दक्षिणा नहीं लेंगे हमारा पूजन जो है ना विधिवत पूरा नहीं माना जाएगा। रावण कहने लगा, मैं इसलिए आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जो वस्तु मैं मांगूंगा वो आप हमें देंगे नहीं, इसलिए मांगना ही गलत है, क्योंकि रहीमदास जी ने भी अपने शब्दों में कहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, और उनते पहले वे मरे कि जिन मुख निकसत नाही। इसलिए मैं आपसे मांगूंगा नहीं। कहा, नहीं भाई मांगो, जो भी इच्छा तुम्हारी हो हम आपको देंगे। तो कहा, सुनिए महाराज कि सुन लो भोले बाबा मेरे, सुन लो भोले बाबा मेरे, इस दास की सेवा सुन लीजिए, सुन लो हे भोले बाबा इस दास की सेवा सुन लीजिए। जिस घर का पूजन करवाया, जिस घर का पूजन करवाया उस घर को ही हमें दे दीजिए, अरे जिस घर का पूजन करवाने के लिए हम आए हैं वो घर ही हमको आप दे दे। भगवान शंकर मुस्कराए, घर दे दिया। विद्वानों का कहना है कि वही लंका जाकर बनी रावण के यहां सोने की। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे ही साखा। तो सबसे पहला गुण तो ये निकला भोलेनाथ के अंदर कि इनको हर एक इंसान पूज सकता है। दूसरा गुण ये निकला कि आज तो सवधर दानी है, जब दान देने के लिए आते हैं तो सब कुछ दे डालते हैं। और तीसरा गुण इनके अंदर यह है कि इनको हर एक मजहब मानता है। इनको हिंदू भाई तो पूछता ही पूछता है, सिख भाई पूछता है, मुसलमान भाई तो कट्टर उपासक है इनका। हमारे बहुत से भाई हैरान रह गए होंगे कि मुसलमान भाई कैसे पूछते हैं। देखिए, भावना हृदय में होनी चाहिए, भावना होना आवश्यक है, दिखावा जरूरी नहीं है, चाहे वो भाव किसी प्रकार का हो। मंदिर में कोई किसी भावना से जाता है, कोई किसी भावना से जाता है, कोई ईश्वर को किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है, लेकिन मानते सभी हैं। मानने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन मानते सभी एक कोई है। तो देखिए, भगवान शंकर जो है हमारे, माता पार्वती जी को आज सुंदर कथा सुना रहे हैं भगवान राम की, कि जिस समय पृथ्वी के ऊपर धर्म घटने लगता है और पाप का भार बढ़ने लगता है, तब तब वो परमपिता परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतरित होता है, अवतार लेता है। जानती हो, एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया और इसी वजह से उस परमपिता परमात्मा को मनुष्य बनकर इस संसार में आना पड़ा। सती जी चौंक पड़ी, स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं, देवर्षि नारद भगवान के इतने बड़े भक्त और उन्होंने श्राप दे दिया, इसकी वजह कारण?
कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, या प्रसंग मोही कहा उपरारी, या प्रसंग मोही कहा उपरारी, सुनी कर मोह आचरज भारी,
अरे भगवान को श्राप क्यों दिया देवर्षि नारद जी ने, ये प्रसंग हम सुनना चाहते हैं स्वामी, हमें आप बतावें, उन राम की चर्चा बतावें कि वो राम कौन है। कहा देखो सती, राम जो है वो सर्वत्र व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्यापक है, कि रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, बसते हैं आत्म व्योम में श्री राम वही है, रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। भगवान सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्यापक है। जिस समय प्रहलाद को बांधा है हिरण्यकशिप ने खंभे से और कहने लगा, बेटा इतिहास में पहली घटना है कि एक राजा अपने शत्रु की वजह से अपने ही बेटे को समाप्त करने के लिए जा रहा है, आज इतना तो बताओ कि जिस राम के लिए इतना दीवाने हो गए हो, जिस राम के लिए अपने प्राणों को देने जा रहे हो, अपने पिता के हाथों मरने जा रहे हो, क्या बता सकते हो इस वक्त वो राम कहां है?
जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला रे धुनी का जाम कहां, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला रे धुनी का जाम कहां, और ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम के दीवाने, बतला अब ते राम कहा।
तो प्रहलाद जी उत्तर क्या देते हैं अपने पिता को
कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है।
और हे पिताजी
मुझ में भी है तुझ में भी है मुझ में भी है तुझ में भी है इस खंभ में है तलवार में है।
और कहाँ है ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ईश्वर ना हो। सूर्य की है किरणों में वो वायु की झनकार में चर अचर में फूल फल हर दरो दीवार में आप में है मुझ में है इस भरे दरबार में खम्भ में है डोर में है आपकी तलवार में।
पहले उसी का नाम है
और देखने वाला हो तो घट घट में व्यापक राम है। अरे पिताजी हर व्यापक सर्वत्र समाना भगवान सब जगह व्यापक है यही बात भोलेनाथ जी कह रहे हैं। सती जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ने लगता है धर्म कम हो जाता है तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो एक बार जब देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया तो प्रभु को अवतार लेना पड़ा। अब तुम्हारे हृदय में इच्छा ही है तो सुनो मैं ये बताता हूं कि वो अखंड ब्रह्मांड कोटि जगदाधार प्रभु इस संसार पर मनुष्य का रूप धर के क्यों आया। एक बार देवर्षि नारद जी टहलते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते कहां पहुंचते हैं हिमालय के अंदर एक बड़ी सुंदर गुफा थी जिसका नाम है हिमगिरी। हमारे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं हिमगिर गुहा एक अति पावन हिमगिर गुहा एक अति पावन हिमगिर गुहा एक अति पावन तेहि लगी रहा सुर सरी सुहावन।
पुनीत सुहावा आश्रम परमा पुनीत सुहावा देखी देखी ऋषि मन अति भावा।
सुंदर स्थान को देखकर सभी के हृदय में आत्मिक शांति प्राप्त होती हो। देवर्षि नारद ने जिस समय ऐसे सुंदर स्थान को देखा तो हृदय में ये भावना बनी कि लाओ यहां पर थोड़ी देर बैठ के भगवान का भजन ही हो जाए। बाबा देवर्षि वहां पर बैठ करके ईश्वर का भजन करने लगे ईश्वर का ध्यान लगाने लगे। इंद्र का इंद्रासन हिला इंद्र घबराया ऐसा ना हो देवर्षि अपने तपस्या के माध्यम से मेरा सिंहासन छीन ले। फौरन ही कामदेव को बुलाया जाओ ऐसा कोई उपाय करो जिससे देवर्षि नारद जी अपनी समाधि को तोड़ डाले। कामदेव आया उसने अपनी वहां पर माया को फैलाना प्रारंभ कर दिया।
किसी मिट तालाब बढ़े उधर तालाब देव सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है। समाती है। और योगी वृंद योग छोड़ भोगी अभिलाषी हुए, योगी वृंद योग छोड़ भोगी अभिलाषी हुए, भोगनी की याद उन्हें आज तड़पाती है। झुक के पेड़ों से बेले लपटाती हैं, नारियों को सारा जग, नारियों को सारा जग नरसा दिखाने लगा, नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है। नारी दर्शाती है, नरों को हर एक चीज नारी दर्शाती है।
बेचारे कामदेव अपनी सभी शक्ति को लगा डालते हैं, लेकिन देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में हार मान ली, चरणों पर गिर पड़े, गिड़गिड़ाने लगे, बाबा क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि आप इतना शक्तिशाली हैं। भगवान शंकर ने आज पार्वती जी से कहा कि हे उमा सुनो, जिस समय देवर्षि नारद जी कामदेव को जीत लेते हैं तो इनके मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। और जानते हो कौन सा अभिमान? कि अरे मैंने उस कामदेव को जीत लिया है जिस कामदेव को बड़े बड़े योगी जति और तपस्वी तक नहीं जीत पाए। और जब मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है तभी उसके पतन का समय नजदीक आ जाता है, क्योंकि प्रभु का नाम है गर्वा आहारी, अभिमान का भोजन करने वाले। इनके अंदर अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, उस कामदेव को जीत लिया जिस कामदेव को जीतने में शायद प्रभु भी कामयाबी प्राप्त नहीं करते। मन में सोचा कि चलूं अब सारे संसार को बताऊं कि मैंने कामदेव को जीता है। आए कहां? सबसे पहले भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी का दर्शन किया, बोले आओ देवर्षि आओ, कहां से आए हो? बस वही बात प्रारंभ कर दी कि बाबा मैं कामदेव को जीत करके आया हूं। भगवान भोलेनाथ मुस्कराए कि मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए। तो भगवान शंकर जी क्या करते हैं? मार चरित शंकर ही सुनाए, अत प्रिय ज्ञानी महेश सिखाए, जिस समय भगवान शंकर जी ने देखा कि देवर्षि के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हुआ है, कहा देखो देवर्षि हमारा कहना मानो, आज ये सब तुमने हमसे कहा तो कहा, ये बात भूल करके भी कभी प्रभु से मत कह देना। लेकिन देवर्षि नारद जी मन में सोचने लगे, अरे जाने दो इस बूढ़े को, इसे क्या मालूम कामदेव को जीतना कितना कठिन कार्य है, भांग का गोला खाए मस्त पड़े रहते हैं, इन्हें क्या मालूम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मन में सोचा बताऊंगा, सैकड़ों बार बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, जो मैंने कर्तव्य किया है उसको सारे संसार को बताऊंगा। लेकिन हमारे भोले बाबा समझ गए कि देवर्षि का अहित होने वाला है, फौरन ही अपने दो सीआईडीओ को बुलाया, कहा जाइए, आप लोग इनके पीछे लग जाइए और देखिए देवर्षि कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी सूचना सारी रिपोर्ट आकर हमको बताएं। उधर ब्रह्मा जी के पास भी पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा आओ मुनिवर, आओ बेटा कहां से आ रहे हो। कहा बाबा कामदेव को जीत कर आ रहा हूं। उन्होंने भी यही समझाया कि देखो ये शब्द हमसे कहा तो कहा, ये शब्द कभी प्रभु से मत कह देना वरना आहित हो जाएगा। नहीं माने, बूढ़े हो गए ना, दिमाग भी बुढ़ा हो गया है, जरूर जाऊंगा भगवान से कहूंगा। जब कोई विपदा का समय आने वाला होता है तो बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि पलट जाती है। सभी ने समझाया लेकिन नहीं माने। एक दिन चलते चलते पहुंच गए। एक बार कर तल कर वीना, गावत हरि गुण गान प्रवीना। एक बार कर तल कर वीना, गावत हरि गुण गान प्रवीना। भगवान के बैकुंठ में प्रभु ने देखा, मुस्कराए, और प्रभु का मुस्कराना ही खतरनाक है। जब जब प्रभु मुस्कराते हैं उनकी माया कुछ ना कुछ भैया गुल खिलाती जरूर है। आज प्रभु ने कहा आओ देवर्षि आओ, कहां से आ रहे हो, कि कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ। कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ। हो करो आए हो कहाँ कहाँ, हो करो आए हो कहाँ कहाँ, जाओगे मुनि बर कहाँ कहाँ। प्रभु जी सुनो, मैं काम जीत कर आया हूँ, बस नाथ जी आपके पास में तो वही सुनाने आया हूँ। कामदेव को जीता है, और उस कामदेव को जीता है जिसको बड़े बड़े जोगी जति तक नहीं जीत सकते। प्रभु मुस्कराए, प्रभु का मुस्कराने तो खतरनाक है। माया प्रकट हुई, बोलिए प्रभु क्या चाहते हो। कहा जाओ देवर्षि के अभिमान को नष्ट करो। माया वहां से चली और उसने एक सुंदर नगर बनाया, 100 योजन लंबा। वहां पर एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या पैदा हुई, श्री निधि नाम के राजा हो गए। विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है। और देखिए नारद जी टहलते टहलते माया के वश, क्योंकि जब अभिमान आता है ना तो बुद्धि पलट जाती है, घूमते हुए जा रहे हैं। उस नगर में पहुंचे, देखा बड़ी चहल पहल हो रही भाई, लोगों से पूछा यहां क्या हो रहा है।